आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभवी है और आज मैं आप सबको द ब्रेव लेडी ऑफ राजस्थान के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। लास्ट चैप्टर में, लास्ट ऑडियो में हमने चैप्टर को रीडिंग कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट किया था। एक्टिविटी वन से ए और बी पोर्शन जो था, टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड ट्रू और फॉल्स, ये दोनों कंप्लीट करे थे हमने। और अब मैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टेन टू ट्वेंटी वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। तो चैप्टर में अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी क्या होती है, तो पेज नंबर 35 पे आप आ जाओ। पेज नंबर 35 में पैराग्राफ जो है उसके एंड में लिखा है, द कमांडर हु वॉज एंशियस अबाउट द पुअर एंड सिंकिंग कंडीशन ऑफ हिज ट्रूप रिजॉइस्ड एट दिस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा द प्रोविंशंस जो आंसर है, क्या उन्हें मिलता है, प्रोविंशंस राइट, खाने पीने का सामान, प्रोविजंस उन्हें मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोविजंस फाउंड बाय सोल्जर्स आर अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। ठीक है, द प्रोविजंस फाउंड बाय सोल्जर्स आर अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी, सॉरी इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी इज होगा, ठीक है, आर नहीं होगा। द प्रोविजंस फाउंड बाय सोल्जर्स इज द अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी। सेकेंड, वेयर डिड द सोल्जर्स फाइंड थिंग्स टू ईट। तो सोल्जर्स को कहाँ पे कुछ खाने को मिलता है, तो इसका आंसर भी है, इसका आंसर है पेज नंबर 34 में। पेज नंबर 34 में आप देखो कि वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो राशन होता है वो लोग जला देते हैं गांव वाले, तो उन्हें थोड़ा सा राशन मिलता है और वही उन्हें खाने को, जो थोड़ा बहुत राशन होता है वही उनको मिलता, वही चीज़ बेसिकली वो खाते हैं जो जला हुआ राशन होता है, जो थोड़ा बहुत राशन बच जाता है जलने से तो वही वो लोग खाते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 34 में होगा, कहीं ना कहीं 34 में इसका आंसर होगा। तो इस, ये पहले ही उसमें है, ठीक है, पहले ही पैराग्राफ में है कि द ट्रूप्स एंटर्ड अ लेन अराइव्ड एट अ स्मॉल ओपनिंग वेयर सम बैग्स ऑफ वीट एंड अ क्वांटिटी ऑफ चपाती शुगर टी एंड अदर प्रोविजंस वर स्टिल स्मोकिंग दो कंज्यूमर। तो इसका आंसर क्या होगा, दो कंज्यूमेबल आइटम्स एविडेंटली बीन स्प्लिट टू प्रिवेंट देयर फॉलिंग इन टू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। ठीक है, तो जो बचा हुआ सामान होता है वही सोल्जर खा पाते हैं। ठीक है, तो आंसर करेक्ट सेंटेंस में हो जाएगा सोल्जर्स, नहीं तो इसका दूसरा आंसर भी होगा क्योंकि सोल्जर्स को खाने की चीज़ें ओल्ड मैन के बेड के नीचे भी मिलती है, बट बेसिकली वो खाते नहीं है, उसे खा के वो मर जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सोल्जर्स फाउंड फूड इन अ लेन, ठीक है, इन अ लेन इन द विलेज, सोल्जर्स फाउंड फूड इन द लेन वेयर इन द लेन ऑफ द विलेज, ठीक है, इन द लेन ऑफ द विलेज सोल्जर्स फाउंड फूड इन द लेन ऑफ द विलेज। अदरवाइज अगर आपको उस हिसाब से देखना है कि ओल्ड मैन के बेड के नीचे भी उन्हें खाना मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दे फाउंड फूड नियर ओल्ड मैन्स बेड, दे फाउंड फूड नियर ओल्ड मैन्स बेड। तो इसका आंसर पेज नंबर 35 में। अगर दूसरा आंसर, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है क्योंकि दोनों ही जगह उन्हें खाना मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने पहले बताया दे फाउंड फूड इन अ लेन ऑफ द विलेज वो ज़्यादा सही आंसर है क्योंकि दूसरा वाला खाना खा के वो मर जाते हैं। थर्ड, व्हाट डिड द वुमेन से बिफोर डाइंग। तो मरने से पहले जो वुमेन होती है वो क्या कहती है, शी सेड, इसका आंसर है शी सेड या द वुमेन सेड, आंसर इसका 36 पे ही है, लिखो, यस आई हैव पॉइजन्ड यू, ऑल ऑफ यू विल डाई सून एंड गो टू हेल। ये जो लाइन है यही इसका आंसर है, शी सेड या वुमेन सेड दैट यस आई हैव पॉइजन्ड यू, ऑल ऑफ यू विल सून डाई एंड गो टू हेल। ठीक है, पेज नंबर 36 में ये लाइन है, इसका आंसर है, हु डिड द सोल्जर्स टेक टू द कमांडर, हु डिड द सोल्जर्स टेक टू द कमांडर, सोल्जर्स टुक विमेन टू द कमांडर, सोल्जर्स या फिर इसका आंसर द सोल्जर्स टुक यंग विमेन टू द कमांडर, द सोल्जर्स टुक अ यंग विमेन टू द कमांडर, ठीक है, क्योंकि नाम नहीं है उस विमेन का तो अ यंग विमेन, ठीक है, सोल्जर्स टुक द सोल्जर्स टुक अ यंग विमेन टू द कमांडर, बहुत वन वन लाइन के आंसर से इनके सिर्फ आपको फिल करने हैं बेसिकली सेंटेंस बना के जो भी पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वॉट डिड द पीपल डू टू सेव देमसेल्फ, तो विलेज के लोग अपने आप को सेव करने के लिए क्या कर देते हैं, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 में मिल जाएगा, क्या क्योंकि आपको उनको नहीं पेज नंबर हाँ पेज नंबर 33 में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो क्या इसका आंसर है, द विलेज पीपल वेकेटेड देयर होम्स, द विलेज पीपल वेकेटेड देयर होम्स, ठीक है, ये आंसर मतलब डायरेक्ट तो नहीं है बट ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, द मूवमेंट ऑफ द एनिमी फोर्सेज वॉज नोटिस बाय सम ऑफ द होम गार्ड्स वेल इन टाइम एंड द नेबरिंग विलेज हैड बीन वेकेटेड, तो जब एनिमी से बचने के लिए वो अपने घर वर छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द विलेज पीपल वेकेटेड देयर होम्स टू सेव देमसेल्फ्स, ओके, द विलेज पीपल वेकेटेड देयर होम्स टू सेव देमसेल्फ्स. Why did the question number 6, why did the enemy march towards a little village? इसका आंसर भी पेज नंबर 33 में है. द एनिमी मार्च टूवर्ड्स अ लिटिल विलेज बिकॉज दे वॉन्टेड टू अवॉइड एन ओपन एनकाउंटर विद इंडियन जवान्स, बिल्कुल 33 का दूसरा पैराग्राफ का पहला लाइन ही इसका आंसर है. द बटालियन द एनिमी मार्च टूवर्ड्स द लिटिल विलेज बिकॉज they wanted to avoid an open encounter with the Indian jawans. Page number 33 का पहला लाइन से ही इसका आंसर आप बेसिकली अपने सेंटेंस में आपको बना के लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6, who were there with the women, who were there with the women, तो the grand with the in the chapter we have a grandfather and a poor child, ठीक है, chapter में grandfather है और poor child होता है women के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा women's grandfather and her child was there with the women, grandfather women's grandfather and her child were there in the were there with the women, तो what की who की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ who की जगह आप ये substitute कर देना, हटा के ये लिख देना, women's grandfather and her poor child were there with the women, ठीक है, सारे questions में आपको what were हटा हटा के basically words डालने हैं अपने, जो correct answer है वो लिखने हैं, बिल्कुल एक एक line के answer हैं सारे, बिल्कुल difficult नहीं है, चैप्टर पढ़ के आप इजीली आंसर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 32-40 वर्ड्स ईच. पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग वुमेन स्टे बैक, तो इसका आंसर है पेज नंबर 34 में, तो जब कमांडर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो क्या आंसर देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द वुमेन stayed there to help her grandfather who was suffering from paralysis, right? The young women stayed there to help her, the young women stayed there because she wanted to take care of her grandfather who was paralyzed, ठीक है? The young women stayed there because she wanted to help her grandfather who was suffering from paralysis. मैंने थोड़े words इधर उधर कर दिए but ये जो paragraph है, I stayed with my grandfather who is suffering from paralysis and so could not follow the rest to the peace. Follow the rest to the safe place. replied the woman boldly, as if annoyed to say a word in the presence of the enemy. I stayed back to take care of him. ठीक है, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसी को तोड़ मड़ोड़ के इसका आंसर आप लिख सकते हैं. एक आंसर मैंने आपको बताया, द यंग वुमेन स्टेड बैक बिकॉज शी वॉन्टेड टू हेल्प हर ग्रैंड फादर बिकॉज ही वॉज एज ही वॉज पैरालाइज. ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. शी वॉन्टेड टू टुक केयर टेक केयर ऑफ देम हिम, शी वॉन्टेड टू हेल्प हिम, शी वॉन्टेड टू यू नो एनी थिंग, वट एवर सूट्स यू. क्वेश्चन नंबर टू, वट वॉज अ प्लान टू किल द एनिमीज. तो उसका प्लान क्या होता है, तो द यंग वुमेन प्लान्ड टू कीप द प्रोविजन्स बिसाइड्स द बेड ऑफ हर ग्रैंड फादर. राइट, तो यंग वुमेन प्लान करती है कि खाना वाना जो भी होगा बचा कुचा वो ओल्ड मैन के साइड में रख देगी. क्यों रखेगी, ताकि यंग जो एनिमी है वो उसको देखें. ठीक है, तो आंसर इसका मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, द यंग वुमेन प्लान्ड टू कीप द फूड नियर हर ग्रैंड फादर्स बेड, शी पॉइजन्ड द फूड. ठीक है, एंड शी पॉइजन्ड द फूड, नहीं तो सिंपल, या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, द प्लान सॉरी द यंग वुमेन प्लान्ड टू पॉइजन द एनिमी. ठीक है, सिंपल, पॉइजन करना चाहती थी बचे हुए खाने के साथ. अगर आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है तो ये वाला बात आप ऐड कर सकते हो, शी केप्ट द फूड नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड सो दैट एनिमी कैन सी देम. ठीक है, सॉरी द एनिमी कैन सी देम. ठीक है, हाँ, दोबारा अगर मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो मैं दोबारा बता देती हूँ. द यंग वुमेन प्लान्ड टू केप्ट द फूड नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड एंड देन शी पॉइजन्ड द फूड. ठीक है, द यंग वुमेन प्लान्ड टू केप्ट द फूड नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड एंड देन शी पॉइजन्ड द फूड, या एंड सॉरी हैंड हटा देना, सिंपल बेड देन शी पॉइजन्ड द फूड, एंड मत लगाना, सिंपल देन के साथ सेंटेंस कंप्लीट कर देना, एंड और देन दो यूज नहीं होते साथ में, सिर्फ देन. ठीक है, नहीं तो आप चैप्टर को, चैप्टर में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आप अपने आप से ये चीज आपको समझ में आएगी कि वो खाने में जहर मिला देती है और खाने को ग्रैंड फादर के बेड के पास इसलिए रखती है ताकि एनिमी की नजर जाए उधर. तो पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब आप ये सेंटेंस बना सकते हैं. एक्टिविटी टू, राइट द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स और अंडरलाइंड. राइट द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स. ओके, तो जो हमें गिवन वर्ड्स हैं इनके मीनिंग लिखना है, इनका राइट द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स अंडरलाइंड. तो जो हमें वर्ड्स हैं या जो ब्रैकेट में है या जो अंडरलाइंड है, इन वर्ड्स को, इन वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग लिखना है, इन वर्ड्स का अनोनिम लिखना है. द ओल्ड मैन बिकेम वीक, इसका आंसर है वीक. स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का आंसर होता है वीक, W E A K. सेकेंड, वी आर प्रिपेयर टू फाइट इफ द डैश अटैक अस. फ्रेंड है दिया हुआ तो फ्रेंड का अपोजिट होता है एनिमी, E N E M Y. ठीक है, द पुलिस डैश द थीफ एंड ही आंसर्ड. तो आंसर्ड अंडरलाइंड है तो आंसर्ड का अपोजिट होता है क्वेश्चन्ड. ठीक है, क्वेश्चन्ड, Q U E S, क्वेश्चन की स्पेलिंग आप लिखो Q U E S T I O N E D. ठीक है, ED लगा देना क्वेश्चन के आगे, ED. फोर्थ, वी हैव रेड इन द बाइबल अबाउट हेल एंड हेवन, HEAVEN. हेल मतलब होता है जहन्नुम और हेवन मतलब होता है स्वर्ग. ठीक है, अपोजिट हमें लिखना है इसका, तो ये इसका आंसर है सारे. सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो ये पांच छह वर्ड्स हमें दिए हैं तो इनको हमें फिल करना है इस पैराग्राफ में, तो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे हम. ऑन 26 जनवरी द परेड बिगन, द डैश कम डैश इन कलरफुल, देन वी डैश, देन वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ डैश डीड्स एंड ग्रेट डैश ऑफ ब्रेव बोल्ड भारतीयस हु डाइड फॉर द नेशन. ओके, तो फिर क्या आंसर होएगा? देखो, वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ, इसके आगे आप लिख दोगे हीरोइक, ठीक है, तो डेज ऑफ हीरोइक डीड्स, ठीक है, तो डेज ऑफ हीरोइक डीड्स, तो वहां आप लिखो हीरोइक एंड ग्रेट सेक्रीफाइस, ठीक है, एंड ग्रेट सेक्रीफाइस. तो ये वाला सेंटेंस तो कंप्लीट कर दिया जो एंड में है हमारा. वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ हीरोइक डीड्स एंड ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव बोल्ड भारतीयस हु डाइड फॉर द नेशन. कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है तो पहले पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद आप वर्ड्स को, सूटेबल वर्ड्स हो, क्योंकि मेरे लिए भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है कि एकदम से वर्ड्स पहचान लेना, अरे इस पैराग्राफ में क्या लिखना है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पैराग्राफ पहले पढ़ूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कौन सा वर्ड किस सेंटेंस के साथ ज़्यादा मैच करता है, तो इससे गलतियाँ कम करने के चांसेस होते हैं. तो आप भी ऐसा करो जैसे मैंने अभी करा, मैंने पहले सेंटेंस पढ़ा पूरा, फिर मैंने वर्ड्स देखे, उसके बाद फिल करा. तो इस लास्ट वाले सेंटेंस को हमने कैसे फिल करा? वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ डैश, क्या डैश में क्या होगा? हीरोइक, हीरोइक मतलब साहस. तो किसकी बातें कर रहे हैं वी, हमें किसकी याद आ रही है? वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ, हम किसको याद कर रहे हैं? हीरोइक मतलब साहस वाले दिनों को, और ग्रेट सेक्रीफाइस जो जो यंग वुमेन ने करा, अपनी जान दे के एक सेक्रीफाइस करा. तो ये सेंटेंस ज्यादा एप्ट है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, अब शुरू से आते हैं. हीरोइक और सेक्रीफाइस तो हम कर चुके हैं. वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ हीरोइक डीड्स एंड ग्रेट सेक्रीफाइस. ऑन 26 जनवरी द परेड बिगेन, द ट्रूप्स केम मार्चिंग इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. तो द ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब जवान, कम मार्चिंग मतलब मार्च करते हुए आना, बिल्कुल लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए जो आते हैं मार्च, सोल्जर्स मतलब मार्च करना मतलब बेसिकली चलना होता है, बट एक पैटर्न में, जैसे सोल्जर्स चलते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट साथ में चलते हैं. तो द ट्रूप्स, तो हम अब ये पैराग्राफ हमने पूरा कर लिया, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ फिर से. कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ये वाला भी ऑब्वियसली, अब कलरफुल ट्रूप्स तो होगा नहीं, तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स मतलब पहनावट, कपड़े, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े, ठीक है. तो इसका आंसर है ऑन 26 जनवरी द परेड बिगन, द ट्रूप्स केम मार्चिंग इन कलरफुल क्लोथ कॉस्ट्यूम्स, देन वी रिकलेक्टेड द डेज ऑफ हीरोइक डीड्स एंड ग्रेट सेक्रीफाइस of brave bold bhartiyas who died for the nation. Okay, ye iska answer hai. See, read the following words, use them in your own sentence so as to bring out their meaning. Okay, bahut sare words hai, sand, send, sand aur send. To aapko different different sentences banate hain in words ke beech. Sand matlab hota hai ret. तो रेत का मैं एक सेंटेंस आपको बता देती हूँ, लाइक द ही डिडंट हैव द सैंड, उसके पास रेत नहीं थी, ठीक है, सैंड, ठीक है, ही डिडंट हैव द सैंड, उसके पास रेत नहीं थी. या फिर विल यू सैंड द वुडन सरफेस, क्या आप इस वुडन सरफेस पे रेत लगा दोगे? तो सैंड का मतलब ये भी हो सकता है, नहीं तो ठीक है, सेंड, I send this message. मैंने ये message किसी को send करा, ठीक है, I send this letter. मैंने किसी को letter send करा. Then dying. Dying and dying. Okay, dying वाला जो E के बिना वाला dying है, उसका मतलब होता है कोई मर रहा है. तो इसको sentence में कैसे use करेंगे? My grandfather is dying. या a dying man. I saw a dying man. His dying wish was to get food. Anything. ठीक है, dying मतलब जब कोई मर रहा होता है. और डाइंग मतलब, ठीक है, और डाइंग वैसे दोनों का प्रोनंसिएशन सेम होता है, डाइंग एंड डाइंग. डाइंग मतलब बालों का जब कलर किसी को चेंज करना होता है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव डाइड आई एम डाइंग माई हेयर, ओके, आई एम डाइंग माई हेयर. तो जब हमें किसी चीज का कलर चेंज करना होता है, देन इट मीन्स डाइंग. हेयर एंड हेयर, ओके, आई एम हेयर, एच ई आर ई मतलब मैं यहाँ हूँ, हेयर मतलब सुनना, एच ई ए आर मतलब सुनना, हेयर मतलब यहाँ और हेयर मतलब कुछ सुनना, ई आर ई मतलब यहाँ और ई ए आर मतलब सुनना. तो हेयर मतलब आई एम हेयर, एच ई आर ई एम मैं यहाँ हूँ, और आई एम हेयर मतलब आई हेयर यू, मैंने तुम्हें सुना, ठीक है, सिंपल. हेयर और हेयर दोनों बेसिकली ये जो सारे वर्ड्स हमें दिए हैं इनके प्रोनंसिएशन सेम है, ठीक है, तभी इनको हमें सेंटेंस में बता के इनकी मीनिंग बतानी है, ठीक है. हेयर मतलब मैं यहाँ हूँ, एच ई आर में मैं आई हेयर यू, मैंने तुम्हें सुना. ऑफ एंड ऑफ, ओके, पहले वाला जो ऑफ होता है वो कोई वर्ड नहीं है सच, पर हम एक प्रिपोजिशन है. तो जैसे मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊं, आई हैव मोस्ट ऑफ द बुक्स इन माई सिलेबस, ठीक है. तो मेरे पास मोस्ट ऑफ द मतलब मेरे पास मोस्ट ऑफ का एज सच कोई मीनिंग, बहुत सारे मीनिंग्स में हम यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशन. अगर ग्रामर की मैं बात करूँ तो एज अ प्रपोजिशन हम यूज करते हैं ऑफ को, क्योंकि हम जैसे कनेक्ट करने के लिए कोई चीज, या ये बिलोंग करने के लिए, या किसी चीज का कोई हिस्सा है, जैसे आई एम पार्ट ऑफ माई फैमिली, आई एम यू नो आई एम द स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया, समथिंग लाइक दिस. ऑफ मतलब किसी चीज, अपने आप को किसी चीज से कनेक्ट करना, किसी चीज से आप बने हो. आई एम मेड ऑफ आई एम मेड अप ऑफ आई एम मेड ऑफ आई मेड दिस डिश, सॉरी, आई मेड अप फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ माई पेरेंट्स. मैं अपने प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हो ना, ऑफ मतलब किसी चीज से बनना भी होता है. और दूसरा वर्ड है ऑफ. ये सेंटेंसेस मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, आपको प्लीज खुद यूज करके आपको बनाने, मैंने आपको अच्छे से वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं. आप मेरा सेंटेंस रिफर कर सकते हो, बट ट्राई टू ओन योर ओन सेंटेंस, ट्राई टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस. ओके, सेकेंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से गिर जाना, मतलब रिमूव कर देना, सेपरेट करना. तो लाइक आई फॉल ऑफ फ्रॉम आई फॉल ऑफ अ लेडर, ठीक है, सॉरी, टू शी टुक ऑफ हर सॉरी शी टुक हर कोट ऑफ, ठीक है, उसने अपना कोट उतार दिया, अपने कोट से वो अलग हो गई. या फिर आई एम ऑफ टू स्लीप, दिस इज अ वेरी फेमस सेंटेंस, आई एम ऑफ टू स्लीप, ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ. किसी चीज से हटना जाना के लिए हम ऑफ यूज करते हैं, आई एम ऑफ टू जयपुर, मैं जयपुर जा रही हूँ, ठीक है. डेजर्ट, नाउन एंड डेजर्ट, ओके, पहला डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, ठीक है, और दूसरा डेजर्ट मतलब स्वीट डिश खाने के बाद जो हम खाते हैं. तो डेजर्ट का आप बताओ, राजस्थान हैज डेजर्ट, डी जिसमें एक ही एस है, राइट, सॉरी, डेजर्ट मतलब छोड़ देना किसी चीज को भी होता है. और डेजर्ट एक्चुअली इतने सारे डेजर्ट है ना, ठीक है. पहला जो दूसरा वाला डेजर्ट है डबल एस वाला, उसका मतलब होता है स्वीट डिश, तो हम पहले उसकी बात करते हैं. तो लाइक माय टुडेज डेजर्ट इज गुलाब जामुन, ठीक है. एंड डेजर्ट मतलब नाउन में अगर है तो डेजर्ट मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, अबैंडन कर देना, जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा, ठीक है. और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान भी, ठीक है. तो दो डेजर्ट के दो मतलब है. तो आप अगर आपको ऐसे करना है तो आई डेजर्टेड माई आई सॉरी ही डेजर्टेड दिस प्लेस एज अ वर्ब, ठीक है. अगर हमें डेजर्ट को एज अ वर्ब यूज करना है तो डेजर्ट मतलब कोई चीज को छोड़ देना, आई डेजर्टेड दिस प्लेस, ठीक है. और अगर हमें वैसे इसको नाउन की तरह यूज करना है, क्योंकि डैश में नाउन है, तो डेजर्ट मतलब ऑब्वियसली सैंड वाला जगह जहाँ रेत होती है, रेगिस्तान. तो आंसर हो जाएगा, इन इंडिया राजस्थान हैज द डेजर्ट, इन इंडिया राजस्थान हैज द डेजर्ट, ठीक है, राजस्थान में डेजर्ट है. थर्ड इज होल एंड होल. तो पहले होल का मतलब होता है कंप्लीट, WHOLE का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है. आई हैव कंप्लीटेड माई होल सिलेबस, आई हैव कंप्लीटेड माई होल सिलेबस, मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया. और दूसरे होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, छेद, होल मतलब किसी चीज में छेद होना. तो एज अ सेंटेंस होल को हम यूज करेंगे, माई जीन्स हैज दिस होल. ठीक है, मेरी जीन्स में ये छेद हो गया. या माई शर्ट हैज दिस होल. ठीक है, मेरी शर्ट में देखो ये छेद है. सेकेंड फिर है डीप एंड डिप. तो डीप मतलब गहरा एंड डिप मतलब डिप मतलब सॉस जैसा होता है. सॉस ही मान लो किसी चीज के साथ, सॉस के साथ हम कुछ खाते हैं, लिक्विड ही सॉगी होता है बेसिकली. तो नाचोस, वी ईट नाचोस विथ डिप, वी ईट चिप्स विथ डिप. ठीक है, डिप मतलब किसी चीज के साथ कुछ खाना. ठीक है, देन डिप के बहुत और भी मीनिंग हम यूज करते हैं, बट सिंपल वे में यही होता है. मतलब सिंपली अगर मेरे दिमाग में फूड के बारे में तो डिप मतलब वही है. बट डिप का और भी मीनिंग्स होते हैं, लाइक कोई चीज नीचे को गिरना, या जैसे कोई स्मॉल अमाउंट में कोई चीज लेना. जैसे आई हैड टू डिप इनटू माय सेविंग्स टू बाय हिम दिस प्रेजेंट. तो कोई छोटा सा चीज लेना, छोटे से अमाउंट में कोई चीज लेना. जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में ये सेंटेंस बोला आपको. डिप मतलब नीचे गिरना भी होता है. जैसे द प्राइसेस ऑफ दिस द प्राइसेस ऑफ कार्स हैज बीन डिप्ड. ठीक है, तो डिप के बहुत सारे मीनिंग है, बट सिंपली आप सॉस मान लो. खाने वाला मीनिंग इज सिंपल टू गेट. एंड डीप, डीप मतलब गहरा. डीप का एक ही मीनिंग है, गहरा. तो गहरा. ठीक है, तो टेक अ डीप ब्रेथ, एक ठंडी सांस लो, है ना. टेक अ डीप ब्रेथ हम बोलते हैं ना. तो डीप मतलब गहरा. देन देयर इज रीच एंड रिच. रीच मतलब किसी जगह पे पहुंचना. ठीक है, आई रीच्ड जयपुर येस्टरडे. मैं जयपुर पहुंच गई कल. रीच मतलब कहीं पहुंचना, और रिच मतलब अमीर. तो आई एम रिच, माई फादर इज रिच, माई मदर इज रिच. ठीक है, रिच मतलब अमीर होना. बट एंड बट, ओके, बट भी कनेक्टिंग कंजक्शन होता है. तो बट हम यूज करते हैं. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई एम सैड. आई वेंट टू बेड बट आई डिड नॉट स्लीप. बट मतलब कोई चीज, मतलब पर मैं नहीं कर पाई. पर मतलब जब पर को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम बट लिख देते हैं बेसिकली. नो, यू आर ब्यूटिफुल बट यू हैव अ डर्ट यू वियर डर्टी क्लोथ्स. ठीक है, तुम खूबसूरत हो पर तुम गंदे कपड़े पहनती हो. तो जब हमें दो कॉन्ट्रेडिक्टरी सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंसेस जो दूसरे सेंटेंसेस से मिलता नहीं है, जब हमें दो सेंटेंसेस ऐसे मिलाने होते हैं तो हम ये कंजक्शन यूज करते हैं, विच इज नोन एज बट. देन देयर इज बट. अब बट का मतलब होता है कि आपका पीछे वाला हिस्सा बेसिकली. ठीक है, तो इसको सेंटेंसेस में ही डिजर्व अ गुड किक इन द बट. उसको पीछे से एक लात मारो, ऐसे बोलते हैं ना, पीछे से एक लात मार. तो ही डिजर्व अ गुड किक इन द बट. ठीक है, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम है पर मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. एक डी से आप बिल्कुल मीनिंग बदल सकते हो. बेसिकली किसी को गाली भी दे सकते हो अगर आप ऐसे बोलोगे ना, योर बट इज स्टूपिड, मतलब गाली देना बेसिकली. तो प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट. तो बट और बट में ये फर्क है, ये डबल टी और सिंगल टी वाले में. देन लास्ट इज सो एंड सो. ओके, सो भी एक कंजक्शन होता है. तो कई बार बट की जगह हम सो भी यूज कर लेते हैं. जैसे यू आर नाइस एंड सो टेंड टू बी एक्सप्लॉयटेड. या ना यू आर मतलब बट को जब दो, मैंने बताया बट कब यूज करते हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस के साथ. दो ऐसे सेंटेंस जिसके मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो, एक ऐसी बात जो दूसरी बात को काटती है, ऐसी बात. बट सो हम ऐसे कंक्लूजन यूज करते हैं. जैसे आई वेंट टू दिस प्लेस एंड सो आई बॉट दिस. मैं वहां गई इसलिए मैं ये ले आई. तो सो को हम ऐसे यूज करते हैं एज अ यू नो इसलिए. बट मतलब पर हिंदी में, इसलिए पर मैंने ऐसा करा. किंतु हिंदी में हम बोलते हैं ना, किंतु मैंने ऐसा करा. बट सो को अगर हम हिंदी में अगर बोले तो हम इसलिए मैंने खाना खाया इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी ने बनाया. ठीक है, तो सो को आप सिंपल मीनिंग में इसलिए. तो एक सेंटेंसेस है आई लव यू सो मच, राइट. मैं तुमसे एक सो को और भी यूज करते हैं टू अ वेरी एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ सॉरी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. तो जब हमें बहुत लाइक वेरी होता है ना, वी आर वाई वेरी हर्ड, उसकी जगह भी कभी कभी सो यूज करते हैं. ठीक है, तो सो के भी काफी डिफरेंट मीनिंग्स है, बट एज अ कंजक्शन यहाँ पे हम देखेंगे सो को, तो सो का मतलब होता है कि इसलिए। कंजक्शन मतलब वैसे कंजक्शन ग्रामर में उन वर्ड्स को बोलते हैं जो दो सेंटेंसेस मिलाते हैं, तो सो भी एक कंजक्शन में से एक है। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ। यू शुड रन सो दैट यू गेट देयर क्विकली। ठीक है, यू शुड रन सो दैट यू गेट देयर क्विकली। या फिर इट इज सनी सो इट विल बी हॉट, टुडे इज अ सनी डे सो इट विल बी हॉट। नाउ सो, अब सो का मतलब क्या होता है? कोई चीज बोना, खेती करते हैं ना तो हम बीज नहीं बोते, तो कोई चीज बोना, जैसे आई सोड मेथी इन माई गार्डन। ठीक है, आई सोड टोमेटोज इन माई गार्डन, सोड। ठीक है, सो एक वर्ब है तो सोइंग, सोन, सोज, कुछ भी हो सकता है। शी सोज माई टोमेटो इन हर गार्डन। तो ठीक है, ऐसे सो का मतलब होता है कोई चीज बोना। ओके, ये चैप्टर में यही एंड कर रही हूँ। अगले चैप्टर में हम आगे के एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी 5 करेंगे। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हम इसको 4 हिस्सों में करेंगे। मुझे लगा हम कर लेंगे आज, बट काफी बड़ा चैप्टर निकला ये। तो एक्टिविटी 3 है और एक्टिविटी 4 है, ये हम अगले ऑडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।